नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव न करते हुए रेपो दर 6.5% पर बरकरार रखा। मुद्रास्फीति पर काबू पाने और आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सरकार ने सिक्किम में बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय केंद्र दल गठित किया। बाढ़ग्रस्त राज्य को आपदा सहायता के रूप में लगभग 45 करोड़ रूपये की राशि जारी किए जाने की मंजूरी दी। मुंबई में 7 मंजिला आवासीय इमारत में भीषण आग से 7 लोगों की मौत। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ती साझेदारी दोनों पक्षों के व्यवसायों के लिए अनेक अवसर प्रदान करती है। और चीन के हांगचोउ में एशियाई खेलों के 13वें दिन भारतीय खिलाड़ी एचएस प्रणॉय और महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने कांस्य पदक जीते। कुल पदकों की संख्या 90 हुई। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी द्विमासिक समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का निर्णय लिया है। आज मौद्रिक समिति की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए इसे 6.5% पर बरकरार रखा है।
It decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, at 6.7%.
रिजर्व बैंक से जारी बयान के अनुसार व्यापक आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों के विस्तृत मूल्यांकन के बाद समिति ने लगातार चौथी बार ब्याज दरें अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। परिणाम स्वरूप स्थायी जमा सुविधा दर एसटीएफ 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर एमएसएफ तथा बैंक दर 6.75% पर बनी रहेगी। बयान में कहा गया है कि टमाटर और अन्य सब्जियों की कीमतों के कारण जुलाई में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। अगस्त माह में इसमें आंशिक रूप से सुधार देखने को मिला। सितंबर में कीमतों में कमी के कारण मुद्रास्फीति में नरमी आई। खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुख्य मुद्रास्फीति में गिरावट का रुख है। हालांकि दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों के लिए खरीफ की बुआई में गिरावट और अस्थिर वैश्विक खाद्य तथा ऊर्जा कीमतों में अनिश्चितताओं के चलते मुद्रास्फीति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। मुद्रास्फीति पर काबू पाने और आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। बयान के अनुसार 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। केंद्र ने बाढ़ग्रस्त सिक्किम के लिए आपदा सहायता के रूप में 45 करोड़ रुपए जारी किए जाने की मंजूरी दी है। ये वर्ष 2023-24 के लिए राज्य आपदा कार्रवाई कोष से केंद्रीय हिस्से की राशि है। इसका उद्देश्य पीड़ित लोगों के लिए राहत उपलब्ध कराने में राज्य की मदद करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नुकसान के आकलन के लिए एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल गठित किया है। एक रिपोर्ट।
गृह मंत्रालय ने बताया कि ये टीम जल्द ही सिक्किम के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेगी और इसके आकलन के आधार पर राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की जाएगी। केंद्र सरकार सिक्किम की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। केंद्र स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सिक्किम सरकार को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की पर्याप्त टीमें, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर और आवश्यक बचाव उपकरण भी उपलब्ध करा रहा है। बिजली, दूरसंचार तथा सड़क, राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय की तकनीकी टीमें क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और संचार नेटवर्क को बहाल करने में मदद कर रही हैं। इस बीच सिक्किम में लापता सैन्यकर्मियों की तलाश जारी है। तीस्ता बैराज के निचले क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए लापता सैन्यकर्मियों की तलाश की जा रही है। सिंगताम और बरदांग के बीच सड़क संपर्क बहाल हो गया है। सेना के जवान लाचेन, लाचुंग और चुंगथान में फंसे 1471 पर्यटकों तक पहुंच चुके हैं। मौसम ठीक होने पर हेलीकॉप्टर से इन पर्यटकों को बाहर लाया जाएगा। गंगटोक से डीआर दुलाल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने आज सुबह रंगको में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों और राहत शिविरों का दौरा किया तथा संबंधित अधिकारियों और लोगों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार जल्द से जल्द पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि आपातकालीन राहत कार्य जारी है। गृह मंत्रालय की टीम राज्य में प्राकृतिक आपदा का आकलन करेगी और इसके आधार पर मुआवजा तथा अन्य पुनर्वास कार्य किए जाएंगे। असम के गुवाहाटी में लगातार बारिश के कारण जल जमाव से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अनिल नगर, नबीन नगर, जू रोड सहित गुवाहाटी के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वाहनों की आवाजाही भी बाधित हुई है। कामरूप जिला प्रशासन ने नागरिकों से 9365429314 नंबर पर जलभराव की सूचना देने को कहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonyayar.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonyayar पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते मित्रता और सहयोग से दोनों देशों के बीच कारोबार के महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होंगे। अबुधाबी चैम्बर द्वारा आयोजित भारत और संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष कारोबारियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग है। श्री गोयल ने इस साझेदारी में भारत के दूसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य, तीसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में सबसे बड़े निवेशक के रूप में संयुक्त अरब अमीरात की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी सहयोग के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है।
All in all, this 11th high-level task force on investments has been full of outcomes. I am very confident that this will set in force a new era of partnership between the two countries, of expanding the scope and the width of investments from the UAE to India, and certainly create millions of new jobs in India.
G20 देशों के संसद अध्यक्षों का 9वां सम्मेलन इस महीने की 13 और 14 तारीख को नई दिल्ली में होगा। सम्मेलन की थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि इस सम्मेलन में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ऊर्जा से संबंधित विषयों के साथ जलवायु परिवर्तन पर गहन विचार विमर्श होगा।
G20 देशों की संसदों का एक सम्मेलन 12, 13, 14 अक्टूबर को नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि द्वारका में आयोजित करने का निर्णय हुआ है। इस सम्मेलन में G20 देशों की संसदें और उसके आमंत्रित देशों की संसदें और उसके अलावा अफ्रीकन पैन इंडिया की संसद के वर्तमान पीठासीन अधिकारी इस सम्मेलन में आएंगे। ये सम्मेलन में करीबन 25 पीठासीन अधिकारी, 10 वाइस प्रेसिडेंट और 50 से ज्यादा सांसद इस G20 सम्मेलन में आएंगे।
अरुणाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के 23 जिलों में फैली 54 ग्राम पंचायतों और 2 जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। मतदान 6 नवंबर को और मतगणना 8 नवंबर को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त रिनछिन ताशी ने ईटानगर में आज संवाददाता सम्मेलन में बताया कि संबंधित जिला परिषद और ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग अपने पर्यवेक्षकों के साथ नई दिल्ली में बैठक कर रहा है। माना जा रहा है कि किस बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों के सुचारू संचालन की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। हाल में निर्वाचन आयोग ने इन राज्यों में चुनाव तैयारियों की स्थिति का जायजा लिया था। आशा है कि आयोग अगले कुछ दिनों में इन 5 राज्यों की चुनाव तिथियों की घोषणा करेगा। मुंबई में गोरेगांव में आजाद मैदान के निकट एक 5 मंजिले भवन में तड़के लगी आग में 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 31 घायल हो गए। 30 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। आग निचली मंजिल की दुकानों, रद्दी सामानों और वाहन पार्किंग में लगी। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हैं। केरल में कल लगभग आधी रात को कोच्चि तट से लगभग 11 समुद्री मील दूर मछुआरों की नाव पलट जाने के बाद तटरक्षक बल और राज्य मत्स्य पालन विभाग ने तलाश और बचाव अभियान शुरू किया है। नाव पर 7 मछुआरे सवार थे। मछली पकड़ने वाली अन्य नौकाओं से 3 मछुआरों को बचा लिया गया। तलाशी अभियान में तेजी लाने के लिए गोताखोरों का एक विशेष दल भी तैनात किया गया है। तमिलनाडु में नागपट्टिनम जिले में कल एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से चार लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राजनीति में नीतियों और आदर्शों को मजबूत करने का वायदा करने वाली आम आदमी पार्टी सबसे अधिक भ्रष्ट और मूल्यहीन पार्टी बन गई है। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी नेताओं का नाम आना दर्शाता है कि भ्रष्टाचार अब इस पार्टी में आम बात है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि जांच एजेंसी को कथित शराब घोटाले में कोई भी सबूत नहीं मिला है और केंद्र की भाजपा सरकार केवल विपक्षी दलों को परेशान करना चाहती है। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉ जोईता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड्स के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक रिपोर्ट।
प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। नीदरलैंड्स के शिक्षा विज्ञान और संस्कृति मंत्री रॉबर्ट डिजग्राफ ने बुधवार को हेग में एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किया। डच रिसर्च काउंसिल द्वारा दिए जाने वाले इस पुरस्कार की राशि 15 लाख यूरो है। प्रोफेसर जोईता गुप्ता एक पर्यावरण विज्ञानी हैं जो एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में पर्यावरण और विकास की प्रोफेसर हैं। काजल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अब हम जो एशियाई खेल खबरों के साथ हैं, खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह।
भारत का एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने आज एक रजत और 3 कांस्य सहित कुल 4 पदक जीते। तीरंदाजी में पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक जीता, वहीं महिला रिकर्व टीम ने वियतनाम को 6-2 से हराकर कांस्य पदक देश के नाम किया। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय ने कांस्य पदक हासिल किया। सेपक टकरा में महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। महिला कबड्डी में भारत ने नेपाल को हराकर फाइनल प्रवेश किया। फाइनल मुकाबले में कल भारत का सामना चीनी ताइपे से होगा। पुरुष कबड्डी में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। कुश्ती के फ्रीस्टाइल मुकाबले में भारतीय पहलवानों को हार का सामना करना पड़ा। बजरंग पुनिया, अमन, सोनम और किरण अब कांस्य पदक के लिए अपना दमखम दिखाएंगे। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत और जापान आमने सामने होंगे। भारत 21 स्वर्ण, 33 रजत और 36 कांस्य सहित कुल 90 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। एशियाई खेलों में भारत का अब तक ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
आज विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवस है। सेरेब्रल पाल्सी के प्रति जागरूकता लाने के लिए दिवस पूरे विश्व में 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए थीम है टुगेदर स्ट्रॉन्गर। ये दिवस मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित लोगों और अन्य लोगों में एकता, सहयोग और आपसी समर्थन का महत्व दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में शिशु रोग विभाग के प्रोफेसर शेफाली गुलाटी ने मस्तिष्क पक्षाघात के लक्षण, उपचार और इससे जूझ रहे लोगों की चुनौतियों से निपटने के लिए उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव न करते हुए रेपो दर 6.5% पर बरकरार रखा। मुद्रास्फीति पर काबू पाने और आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सरकार ने सिक्किम में बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल गठित किया। बाढ़ग्रस्त राज्य को आपदा सहायता के रूप में लगभग 45 करोड़ रूपये की राशि जारी किए जाने की मंजूरी दी। मुंबई में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में भीषण आग से 7 लोगों की मौत। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ती साझेदारी दोनों पक्षों के व्यवसायों के लिए अनेक अवसर प्रदान करती है। और चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों के 13वें दिन भारत ने आज एक रजत और 3 कांस्य सहित कुल 4 पदक जीते। पदकों की संख्या 90 हुई।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।